सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
आज सोच विचार में मुझे बड़ी खुशी होती है वेलकम करते हुए हमारे एक नामवर इकोनॉमिस्ट, हमारे नामवर प्रोफेसर जिनका मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान नाम जानती है और माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमात है। इन्होंने ना सिर्फ हुकूमतों को एडवाइस किया, इन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया। इसके बावजूद कि ये अपनी एक फैक्ट्री चलाते थे और माशाल्लाह उसमें बड़ी सक्सेस इन्होंने पाई, इनके बॉल पॉइंट पेन मेरा ख्याल हम सब इस्तेमाल करते हैं। आप अगर पेन निशानों को जानते हैं तो वो अकबल साहब की तश्कील है। अकमल हुसैन साहब मेरे साथ हैं, ये जैसे एक माहिर इकोनॉमिक्स हैं और मशहूर प्रोफेसर हैं, हजारों इनके स्टूडेंट्स मार्केट में सब हैं और इन्होंने माशाल्लाह बड़ी तहकीक की है। आपने इनकी किताबें लिखी हुई हैं, इनकी बहुत सारी किताबें दुकानों में मिलती हैं, कुछ चले इससे किताबों में ये कुछ ना कुछ कर चुके हैं, तीन चार खुद लिख चुके हैं और बेतहाशा पेपर वगैरह। तो खैर मैं इनकी और तारीफ नहीं करता क्योंकि आप सब इनको जानते हैं, कितनी तारीफ की जाए कम है, तो मेरा ख्याल हम इधर ही छोड़ दें। अब इनके साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं। अकबर साहब ने माशाल्लाह बड़े एरियाज में काम किया और एक एरिया जो मुझे कोई 20-30 साल पहले भी याद है जहाँ इन्होंने शुरू किया था, जिसमें मैं इनको कहता हूँ पाकिस्तान के किस्म के पायनियर हैं। इन्होंने बिफोर डोनर्स वगैरह इंटरेस्ट देते थे, इनका शौक था पॉवर्टी का और ये अपने पैसे से पॉवर्टी में सर्वेस करते थे और तहकीक किया करते थे और मैं बचपन से इनसे बहस करता हूँ पॉवर्टी पर, तो आज मुझे बड़ा मजा आएगा इनसे बहस करके पॉवर्टी पर। तो अकबर साहब ये जो आपने पॉवर्टी पर इतना काम किया, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देना पहले आगे जाने से।
आपको शायद अभी याद ही होगा कि एक वक्त था 1960s-70s में जबकि पॉवर्टी को इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में या इकोनॉमिक प्लानिंग में कंसिडर ही नहीं किया जाता था। उस वक्त जो जोर दिया जाता था, जो फोकस होता था गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में, वो था कि कैसे कौमी आमदन में तेजी से इजाफा करना। बल्कि सितम जरीफी तो ये है कि जो 1960s में फाइव ईयर प्लान्स बने, खासतौर पे थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था 60-65 वाला, उसमें ये सोच थी कि अगर कौमी आमदनी कम है यानी केक छोटा है तो उसको उसकी मसावी बांट जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात नहीं होनी चाहिए जब जीडीपी ग्रोथ, जब जीडीपी लेवल कम हो, तो पहले तेजी से ग्रोथ करें ताकि जीडीपी का साइज बढ़े, केक का साइज जब बढ़ जाएगा तो फिर ये उसकी जो तकसीम है उसके बारे में बात करें। तो अब वो केक के साइज को तेजी से बढ़ाने का जो मकसद था वो उन्होंने एक अजीब वरीब उस जमाने की जो इलम था उसके मुताबिक उन्होंने किया, वो ये था कि क्यों उनका यानी ये अजम्पशन ये थी कि जो अमीर लोग हैं वही अपनी आमदन का ज्यादा बड़ा हिस्सा बचाते हैं और जो बचत है वो अगर सरमाए में लग जाए तो तेजी से कौमी आमदन में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए और जो गरीब है, क्योंकि वो उनका ख्याल था कि गरीब जो है वो अपनी आमदन का एक ज्यादा बहुत कम हिस्सा बचत में लाता है, तो इसलिए अगर आपने कौमी आमदन में तेजी से इजाफा करना है तो फिर ऐसी पॉलिसीज अख्तियार की जाए जिनके जरिए गरीब से अमीर तक आमदन शिफ्ट हो, यानी गरीब को ज्यादा गरीब कर दें और अमीर को ज्यादा अमीर कर दें ताकि पूरे मुल्क के अंदर बचत भी बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए और ग्रोथ भी बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट सरप्लस आ जाए, ये वो सोच थी। अब तो से कहना पड़ा
ट्रिकल डाउन इकोनॉमी,
अब उनका ये दूसरा ये थी कि जब ग्रोथ होगी तो उसका कुछ असर जो है वो गरीबों पर भी पड़ेगा, कौमी आमदनी जब बढ़ेगी तो फिर गरीब की भी हालत बेहतर होगी किसी हद तक। जरूरी नहीं कि अमीर की आमदन के मुकाबले में उसकी आमदन बढ़ जाए गरीब की, मगर गरीब की अपने तौर से आमदन जरूर बढ़ेगी, ये उसके अंदर सोच थी। अब हुआ ये कि असल में जो फैक्ट्स आए वो ये थे कि गरीब से अमीर की तरफ आमदन तो शिफ्ट हो गई, गरीब ज्यादा गरीब हो गया और अमीर ज्यादा अमीर हो गया, मगर उस मफरूजे के मुताबिक अमीर ने अपनी जो बचत थी वो नहीं बढ़ाई, अपनी आमदन पे जो हिस्सा बचाना चाहिए था उसको वो नहीं बचाया, उसने वो अपनी आमदन जब बढ़ी तो उसने याशी के सामान में खर्चा कर दिए, गाड़ियां खरीद ली, घर बना लिए, ये वो। तो नतीजा ये हुआ कि कौमी जो बचत थी उसकी सतह बहुत कम रही, और यही वजह थी जो कि शुरू में से हमें फिर फॉरेन एड की तरफ धकेला जिसने। दूसरी तरफ जो उनका ख्याल था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, यानी कॉमन कौमी आमदनी तो बड़ी 5-5.5% अयूब खान के जमाने में, मगर उनका जो ख्याल था कि गरीब तक उसका असर पड़ेगा वो गलत साबित हुआ। और अयूब खान की हुकूमत के नजदीक एंड जब हुई 1968 के करीब, उस वक्त ये हालत हो गई थी कि पाकिस्तान की आबादी का जो 60% हिस्सा है, निचला 60% हिस्सा, उसकी पर कैपिटा फूड कंजम्पशन के अंदर एब्सोल्यूट डिक्लाइन आ गया। यानी जो गजा इस खाता था फीकस इंसान निचली 60% आबादी का, वो कम हो गई उस अरसे में जबकि कौमी आमदन में काफी तेजी से इजाफा हो रहा था। तो ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ। और इसलिए मैं जब
आपको कैसे शौक, ये सब तो चल रही थी जिस जब हम पढ़ रहे थे
जी,
आपको पॉवर्टी का शौक कैसे हो गया? मुझे तो
बहुत शौक इतनी बात नहीं है जितना कि पॉवर्टी से शौक मिलता था मुझे, यानी मुझे झटका
लगता
जी। बचपन से मुझे जब हम जाते थे बाहर, तो जब गरीब अपना मानता था और कमजोर उसकी हालत थी और आंखें उसकी अंदर डली होती थी, मुझे आंखें देख के गरीब की मेरे दिल को बहुत चोट लगती थी। और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ने का फैसला ही इसलिए किया कि मैं चाहता था कि मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मैं इसका कोई हल ढूंढूंगा। तो बहरहाल वो एज इट सो हैपेंड, वो फिर जब मैंने पीएचडी किया तो पीएचडी के दौरान जो मेरा फील्ड वर्क था उसके लिए मुझे गरीबों के घरों में रहना पड़ा गाँव के अंदर। तो गरीब से गरीब जो अधिकार है उनके घर तक मैं जाता था 10-10 मील पैदल सड़क से, और वो मुझे ठहराते थे बड़े प्यार से और बड़ी उनकी फराख दिली से। मुझे अपने एक कमरा होता था, तूड़ी पड़ी होती थी, कुछ मुर्गियां होती थी, कुछ अंडे होते थे, भैंस होती थी, तो उन्हीं में वो हमें सोना पड़ता था। मगर वो जो अंडे उनके होते थे उसके ऑमलेट बना के मुझे रोटी खिलाते थे, तो मुझे उनसे बड़ा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने उनको बहुत प्यार दिया। और मैं समझता हूँ कि उनको प्यार करने का मेरे पास एक ही तरीका था कि जो मेरी टूटी फूटी सलाहियत है उस इकोनॉमिक्स में उसको मैं इस्तेमाल करूं ताकि उनकी उनके उनकी बेहबूद के लिए पॉलिसी बने।
तो आप कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि उनकी इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसका फोकस होना चाहिए पॉवर्टी एलिविएशन या के गुर्बत को कम करना।
जी तो अब देखना यह है कि सबसे पहले तो सवाल यह है कि गुर्बत होती क्यों है। ये आप देखें कि अगर पूरी दुनिया के हवाले से देखें ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो पिछले 300 साल की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड है पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें मुसलसल पूरी दुनिया की आमदन जो है वर्ल्ड इनकम उसमें कॉन्टिन्यूस इंक्रीज आता रहे, यानी तसलसल से मुल्क पूरी दुनिया की आमदन में इजाफा आता रहे। ये और बात है कि कुछ मुल्कों के अंदर कम इजाफा हुआ या हुआ ही नहीं, तो कुछ मुल्कों में ज्यादा इजाफा हुआ, मगर पूरी दुनिया की आमदन के अंदर पिछले 300 साल से इजाफा हो रहा है। और इंसान की तारीख में कोई और ऐसा वक्त नहीं आया जबकि इतने लंबे अरसे के लिए पूरी दुनिया की आमदन के अंदर इजाफा होता हो। अब देखने की बात यह कि बावजूद इस हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड सस्टेन्ड इंक्रीज इन वर्ल्ड इनकम्स, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्राइवेट जेट्स के ऊपर फिर रहे हैं, बल्कि गरीब मुल्कों के लीडर भी प्राइवेट जेट्स पर फिर रहे हैं, मगर साथ साथ हर 4 सेकंड के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं एक शख्स भूख की वजह से मर रहा है। यानी दुनिया में जबकि इतने थोड़े से लोगों के पास इतनी ज्यादा आमदन है कि वो जहाजों पे फिर रहे हैं गोल्फ खेलने के लिए, तो हर 4 सेकंड के बाद एक आदमी एक शख्स की जान जा रही है भूख की वजह से।
इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं, ये जो आपने कहा है बड़ी अच्छी बात की है कि दुनिया में पिछले 300 साल में आमदन बहुत बढ़ी है, माशाल्लाह अमीर से अमीर हो गए लोग, बिल गेट्स इज अ बिलियनर्स कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स वगैरह, वो अब बिलियनर्स तो है और उनके पास माशाल्लाह बहुत दौलत है, पर एक और चीज की तो देखी जाए कि हमने बहुत सारे मुल्कों में से गुर्बत साफ कर दी
जी,
अमरीका जैसे हुआ, बर्तानिया हुआ, अपने जो यूरोपियन कंट्रीज है, जापान वगैरह, ये मतलब थोड़ी बहुत फिर रह गई है, मैं नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गई, बट बहुत हद तक हमने खत्म कर दी है। मिडिल क्लास को हमने इतना बढ़ा दिया जहां पहले पूरे बहुत ज्यादा तादाद आदमी होते थे, अब मिडिल क्लास बहुत पड़ गई है। तो पॉवर्टी का जो है प्रॉब्लम वो तो सिर्फ अब गरीब हमारे जैसे मुल्कों में रह गया या आप नहीं रह गया
जी, एक्चुअली गुर्बत जो है वो एडवांस ममालिक में भी मौजूद है, अमेरिका में, बल्कि अमेरिका के अंदर तो आपको पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसा इतना ज्यादा ऐसा नहीं जितना इंडिया के अंदर गरीब है, मगर तकरीबन 12% लोग अमेरिका के अंदर अभी भी गुर्बत की सतह से नीचे हैं, और भी जो एडवांस मुल्क हैं उनके अंदर गुर्बत है। अब यूरोप में अगर आप चले जाएं तो वहाँ स्पेन और इटली के अंदर तकरीबन 20% जो उनकी लेबर फोर्स है वो बेरोजगार पड़ी हुई है, तो गुर्बत तो जाहिर है वहां पे भी है। अब जो मैंने पूरी ग्लोबल लेवल का फिगर इसलिए देने की कोशिश की थी कि ये जरूरी है समझना कि गुर्बत होती क्यों है और ये क्या वजह है कि बावजूद कौमी आमदन के या दुनिया की आमदन बढ़ने के बावजूद फिर भी काफी सारे लोग बहुत गुर्बत के अंदर मुब्तला है। अब उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आमदन को जो चीज जनरेट करती है वो आपके असासे हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स इसको कहते हैं, जिनके अंदर से इनकम निकलती है। अब ये प्रोडक्टिव एसेट्स जो हैं ये पूरी दुनिया में भी और हमारे जैसे मुल्क में भी वो थोड़े से लोगों के हाथों के अंदर ज्यादातर प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, तो जाहिर है जब इनकम निकलेगी उनमें से तो कौमी आमदन तो बढ़ेगी या दुनिया की आमदन तो बढ़ेगी, मगर सिर्फ जो अमीर लोग हैं जिनके हाथ में वो असासे हैं उनकी आमदन के अंदर बहुत तेजी से इजाफा होगा। तो अब आप देखेंगे पिकेटी एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, ये पहले वक्तों में आपको याद होगा जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो एक इकोनॉमिस्ट था कुजनेट्स, वो हमारे माशाल्लाह वर्ल्ड बैंक के लोग अभी तक भी समझते हैं कुजनेट्स सही कह रहा था। कुजनेट्स जो है वो उसने ये बताया कि जी मुल्कों की जो आमदन है जब शुरू में बढ़ी होती है तो उसमें फिर इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ जाता है, मगर एक खास लेवल आता है जीडीपी का जब वो गरीब और अमीर का जो फर्क है वो बढ़ना कम हो जाता है और फिर मजीद जब कौमी आमदन बढ़ती है तो फिर गरीब और अमीर का फर्क कम होना शुरू हो जाता है। अब ये जो टिकटी है जो कि इन्होंने बुनियादी काम किया है, 300 साल का डेटा उन्होंने लिया है इकोनॉमी का, उन्होंने ये बताया है कि ये जो कुजनेट्स का व्यू था ये एक कहानी है, ये यानी ये फरिश्तों की कहानी है, ये असलियत के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं है। और असल में हुआ ये है कि अमीर के पास जो असासे थे जिसकी वजह से गरीब और अमीर के आमदनों में फर्क आ रहा था, वो यानी जब वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, असासों की जो तकसीम है, वो वक्त के गुजरने के साथ बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। और वजह उसकी ये है कि जो सरमाया का रिटर्न है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल वो जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है, तो यानी कौमी आमदन की जो स्पीड है बढ़ने की उससे ज्यादा रेट जो है वो सरमाया का जो रिटर्न है उससे आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो सरमायादार है वो ना सिर्फ उसका सरमाया बढ़ता जाता है वक्त के साथ बल्कि उसकी कौमी आमदन का जो हिस्सा उसके पास आता है वो भी बढ़ता चलेगा। तो ये अब नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है और ये आपका सवाल हमारा सवाल ज्यादा शार्पली निकाल रहे हैं कि गुर्बत क्यों होती है और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। सो गुर्बत की बुनियादी वजह ये है कि जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, पाकिस्तान के केस में जमीन है और ये कैपिटल है फैक्ट्रियों का, यानी सरमाया और जमीन, इसकी जो तकसीम है ये बहुत अनइक्वल है, गैर मसावी है। थोड़े से लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, थोड़े से लोगों के पास ज्यादातर सरमाया है। नतीजा ये होता है कि फिर जो आपका आमदन का बांट है वो भी गैर मुसावी हो जाते हैं। दूसरी इसकी वजह ये है जी कि ये बड़ा इसका पॉलिसी के साथ इसका तल्लुक है कि आप देखें कि आपने मगरबी ममालिक के बारे में बात की कि जी वहाँ पे तो गुर्बत बहुत कम हो गई है, जो कि निस्बतन 19वीं सदी के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी एक वजह ये है कि हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंटरवीन उन्होंने किया, उन्होंने ये किया, उनका ख्याल ये है और दुरुस्त है कि जो टैक्स है ना, लोगों को आप अमीरों को ज्यादा टैक्स करें और गरीबों को कम टैक्स,
प्रोग्रेसिव टैक्स,
ठीक है, जिसको प्रोग्रेसिव टैक्स करते हैं। तो वो जो अमीर आदमी से पैसे लिए होते हैं हुकूमत ने टैक्स इनकम में, वो गरीब आदमी की बहबूद के लिए खर्चे। अब गरीब आदमी की बहबूद के लिए किस तरह वो खर्चते हैं कि उनको सस्ता ट्रांसपोर्ट दिलवाते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको सस्ती तालीम देती है, उनको सस्ती सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और कई जगह उनको जो सोशल सिक्योरिटी जिसको तो उसको सोशल सिक्योरिटी के नाम से कहा जाता है, जिसके अंदर अगर आप बेरोजगार हो गए हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये जो हुकूमत की पॉलिसी इंटरवेंशन है, ये किस्म का रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म बन जाता है।
यहां मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि ये भी जरूरी है कि आपका जरा देखिए इसको थोड़ा सा प्रोब भी करना चाहिए भी करना। चलिए आपकी बात बिल्कुल बचा है कि ये जो आपने बात की है सब सही है, पर इसमें एक दो चीजें मैं ऐड कर दूं
जी।
क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो कैपिटलिस्ट निजाम है जो 300 साल पहले निकला, जिसमें से माशाल्लाह हमने इतनी ग्रोथ पाई
जी,
इतनी टेक्नोलॉजी पाई
जी,
ठीक है, जिसमें हमने इतनी बड़ी मिडिल क्लास बना दी थी। देखिए एक जमाना था जबकि यूरोप और अमेरिका के लोग आने वाले बड़े
भूखे
नंगे रहते थे, अब उन सब के पास घर गाड़ी और ये वो माशाल्लाह। आपने ठीक कहा कि वहां पॉवर्टी है, नहीं कहता पॉवर्टी खत्म हो गई, पर वहां एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, पहले बहुत बड़ी पूर्व क्लास की बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, और इवन जो पुअर है उनको जैसे आपने कहा स्टेट उनको लुक आफ्टर करती है, ये भी कैपिटलिज्म का कमाल है। तो क्या फिर आप कैपिटलिज्म के सिस्टम के तालीम करते हैं कि उसके आप हामी हो गए कि नहीं?
ये इस जो हमारी इस वक्त डिस्कशन है वो कैपिटलिज्म की अच्छाई या बुराई या उसका सिस्टम उसके बारे में नहीं है। हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं कि गुर्बत की वजह क्या है इस सिस्टम के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर, कैपिटलिज्म के सिस्टम में रहते हुए उसको कैसे काम या खत्म किया जा सकता।
तो फिर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल है इसको खत्म करने
जी। अच्छा अब मैं सिर्फ ये इसलिए गवर्नमेंट का रोल लेके आया, मगरब के अंदर तो गवर्नमेंट ने ये रोल अदा किया, मगर हमारे मुल्कों में जो गवर्नमेंट ने रोल अदा किया वो उलट रोल अदा किया, बजाय ये कि अपनी पॉलिसीज के जरिए वो गरीब से जो गरीब से ज्यादा टैक्स ले और वो जो टैक्स इनकम है वो गरीब की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, इन्होंने उलट इस्तेमाल किया पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी। किस तरह? एक इसका एग्जांपल ये है कि उन्होंने जो टैक्सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए वो इनडायरेक्ट टैक्स थे,
मोबाइल फोन पे, खाने पे,
हर चीज जो हर अशिया जो के आम आदमी इस्तेमाल करता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। इनकम टैक्स बहुत ज्यादा रिलेटिवली कम उसके अंदर से आमदन आई जो कि डायरेक्ट टैक्स
होता
भी बहुत मिली। अब नतीजा यह हुआ कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिससे हमारी कोई 85% से ज्यादा की हुकूमत की टोटल रेवेन्यूज आ रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्स का भार गरीब पर निस्बतन ज्यादा पड़ता है कंपेयर अगर उसको आप मुकाबला करें अमीर के ऊपर। जो जो पाइल में स्टडी की पहले डॉक्टर यार कमाल साहब ने, उन्होंने दिखाया कि वो पोस्ट टैक्स इनकम जो है वो गरीब की कम हो रही है और अमीर की ज्यादा हो रही है इस इनडायरेक्ट टैक्स से। तो गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम जिसका मकसद ही गरीब से अमीर तक आमदन को ट्रांसफर करना था, उसका उल्टा असर पड़ना शुरू हो गया कि गरीब से अमीर पे आमदन जानी शुरू हो गई डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा ये कि जो आमदन इकट्ठी होती भी थी हुकूमत के पास रेवेन्यूज और टोटल जो हुकूमत के एक्सपेंडिचर से, अब बहुत बड़ा हिस्सा आपको पता ही है कि हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स का रेवेन्यू की बुनियाद की नहीं है बल्कि फॉरन एड की बुनियाद के ऊपर है। तो वो जो कि आज आके गरीब के ऊपर ही भार पड़ता है फॉरन एड के ऊपर वापस करने के लिए, तो वो जो खर्चा था हुकूमत का उसका भी बजाय गरीब को ज्यादा फायदा होने के अमीर को ज्यादा फायदा पहुंचाना शुरू हो गया। अब आप लाहौर के अंदर देख लें कि ज्यादातर हिस्सा जो इस हुकूमत के अखराजात का है वो अमीर आदमी की गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है जी, नया की सड़क चौड़ी कर रहे हैं उधर, अब बाइक उसको ट्रैफिक लाइट्स के बगैर सड़कें बना रहे हैं,
गरीब की साइकिल पैदल चलने को फोर करके
पैदल चलने का रास्ता ही कोई नहीं है,
गरीब की साइकिल भी।
और जो पेडेस्ट्रियन का आप देखेंगे वो जो ओवरहेड ब्रिज है उस पर बूढ़ा आदमी मेरा जैसा तो वो चढ़ ही नहीं सकता, कमजोर आदमी चढ़ ही नहीं सकता। और एक ब्रिज से लेकर दूसरी ब्रिज तक इतना ज्यादा फासला है कि आप देखेंगे कि गरीब आदमी इस वक्त अपनी जान को तली में रख के वो सड़कें पार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे इतनी तेजी से गाड़ियां चल रही हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हुकूमत जो का जो खर्चे हैं, जो कि हुकूमत के जो खर्चे हैं जो कि बुनियादी तौर पे गरीब की जेब से निकाले जाते हैं, हुकूमत के अखराजात जो बुनियादी तौर पे गरीब की जेब से निकाले जाते हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हो या फॉरेन एड को वापस करने के सिलसिले में निकाले जाए, वो अखराजात भी अमीर की सहूलत के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती पॉलिसी है जिसका कि बाकी दुनिया के अंदर मकसद अमीर से आमदन ले के टैक्सेशन के जरिए गरीब की बहबूद के ऊपर खर्चने के लिए होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म होता है, यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो हुकूमती पॉलिसीज हैं वो एक तो टैक्सेशन इस तरीके से करती हैं कि उसका निस्बतन भार गरीब पे ज्यादा पड़ता है, और दूसरा वो टैक्स की जो आमदन है उसका खर्चे जो है वो बजाय गरीब के ऊपर ज्यादा खर्चने के वो अमीर पे ज्यादा, अमीर की बहबूद के लिए और उसकी सहूलत के लिए ज्यादा खर्चे जाते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि गरीब और अमीर का जो फर्क है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि बहुत सी आप देखेंगे पाकिस्तान में इलाके हमारी जो लेबर फोर्स है, टोटल लेबर फोर्स, इसमें इलाकाई फर्क बहुत ज्यादा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर आप टोटल लेबर फोर्स अगर अपनी देख लें, यानी जो लोग काम करने की उम्र में है, तो 97% लेबर फोर्स जो है वो अनस्किल्ड है, उनके पास कोई यानी स्किल नहीं है, हुनर नहीं है। तो जाहिर है कि फिर जिसके पास हुनर नहीं है अगर उसको नौकरी मिल भी जाती है तो उसमें से उसकी आमदन बहुत कम होगी। अब हुनर जिन लोगों के हाथ, जिन लोगों को एजुकेशन के की फैसिलिटीज मौजूद हैं वो अमीर लोगों के पास, हाई बेहतर क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो अमीर लोगों के पास, अमीर लोगों के को मैसर है, अमीर लोग ही अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अमीर लोग ही अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, अमीर लोगों को ही अच्छी तनख्वाह की नौकरियां मिलती हैं, और जो गरीब है क्योंकि उसने अपनी सलाहियत को उसको डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया गया, जिसको सैन्य कैपेबिलिटीज था वो अपनी, क्योंकि कैपेबिलिटीज उसने डेवलप ही नहीं की इसलिए उसको उसकी आमदन की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी बहुत कम हो जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो तालीम का ढांचा है वो इस तरीके का बना हुआ है कि उसमें जो आमदन की गैर मुसावी तकसीम है उसको और रीइंफोर्स कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, गरीब को और ज्यादा गरीब कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो स्कूलों के अंदर का जो डेटा आ रहा है, जो जिसमें ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है कि जी स्कूल से बच्चे भाग जाते हैं, आप देखेंगे ये स्कूल के अंदर से बच्चे भाग क्यों रहे, उनके ऊपर आप अगर स्टडी करें तो आपको नजर आएगा कि उनके माँ बाप, मेरे पास एक गरीब इलाके में मैं गया हुआ, मेरे पास एक गरीब बच्चे की माँ आई, उसने कहा जी तुसी साढ़े बच्चों को खराब कर दिता, तुम स्कूल असी भेजने वो तो पढ़ाते, उन्होंने कोई काम की चीज तुम पढ़ाते नहीं, और उन्होंने चंगे कपड़े पाना और मोटरसाइकिल खरीदने की तालीम तुम देते हो, साढ़ा बेरा गेरा काफी कर दिया, असं बच्चों नहीं दे पढ़ा। यानी ड्रॉप आउट रेट्स की वजह ये है कि वो जो उस बच्चे और उनके माँ बाप नहीं समझते कि वो तालीम रेलेवेंट है उनकी उनकी फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, उनको किसी ना किसी काम में लगा देते हैं या फार्म के अंदर लगा देते हैं या मांगने के ऊपर लगा देते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स हो जाते हैं। तो अब मुसीबत ये है कि आपकी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो भी गुर्बत को यानी आमदन की तकसीम को बढ़ा गैर मुसावी बना रही है और ज्यादा, आपके असाथे जो है उनकी तकसीम भी आमदन की तकसीम को गैर मसावी बना रही है, और आपकी तालीम का जो ढांचा है वो भी उसको और गैर मसावी बना रहे हैं। अब आप आ जाए सेहत, सेहत भी बड़ी जरूरी है लोगों के लिए। अगर आप बीमार एक शख्स बीमार है तो कैसे काम करें,
सेहत में भी वही बात आ रही
जी।
बट एक छोटी सी बात, ये सब कुछ अब इस चीज पे आ गया, फ्रेमवर्क आपका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छे से किया। ये बताएं ये सब कुछ हो क्यों रहा है? अब आपके जैसे लोग हुकूमत को कितनी देर से एडवाइस करते रहे हैं, माशाल्लाह आलमी इदारे हैं जिन्होंने हुकूमत को आके बड़ी रिपोर्टें दी है, बड़ी एडवाइस की है, ये सब निजाम ठीक क्यों नहीं हुआ
जी? अब हम क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक्स की सतह के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं समझ आ रही कि सियासत और सियासी पावर और इकोनॉमिक पॉलिसी के दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई जाती है उसके पीछे अमीर लोगों के इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं निस्बतन, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ना सिर्फ आपके असासों की और आमदन की तकसीम बल्कि जो पॉलिटिकल पावर है वो भी थोड़े से लोगों के हाथों में
है।
अच्छा, अब आप कह रहे हैं ये कि जो डेमोक्रेसी है उसके हाथ बना
वोट,
तो अब आप ये और फरमाएं जरा कि पिछले जब से कुछ अरसे डेमोक्रेसी होती है, जब भी डेमोक्रेसी आती है मुल्क के अंदर, यानी इलेक्शन होता है, इलेक्शन इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए मगर काफी नहीं है इलेक्शन, क्योंकि होता यह है कि हर इलेक्शन के बाद वही पार्टियां जो हैं और वही बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े जिम्मेदार जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। अगर एक पार्टी जीत जाती है तो उसके आ जाते हैं, और अगर दूसरी पार्टी जीत जाती है तो उसके भी वो भी सरमायादार गरीब आदमी जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आ ही नहीं सकता। उसके आप कह सकते हैं कि इलेक्शन रूल्स ही ऐसे हैं, पैसा होगा तो आप इलेक्शन लड़ेंगे एक्सेट्रा। अच्छा, अब क्योंकि थोड़े से लोगों के हाथ में ज्यादा पॉलिटिकल पावर, सो एक पावर स्ट्रक्चर है जो कि डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसके ऊपर उसको इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी की आइडियल है, यही इक्वालिटी होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के बनने में इक्वालिटी का आइडियल है, वो डिफीट हो जाता है जब आपकी जो पावर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वो ऐसा कि सिर्फ अमीर के हाथ में पावर है, और चुनाचे वो ऐसी पॉलिसी बनाने से को रेजिस्ट करेगा। आप जितना मर्जी उनको अच्छी पॉलिसी बताएं, वो ऐसी पॉलिसी को रेजिस्ट करेगा जिसके नतीजे में अमीर का कंट्रोल कम होगा, और जितनी देर मेरी नजर में अमीर का कंट्रोल रिड्यूस नहीं होता और गरीब को अनपावर नहीं किया जाता जा सकता, उतनी देर तक आपकी बुनियादी तौर पर नई किस्म की पॉलिसी नहीं आ सकती। अच्छा, अब हमने अगला चीज जो देखनी है कि हम किस तरह इस मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप इंकलाब लेके आए और दो अगर इन्होंने कुछ ना किया तो भी जा गया। मुझसे एक अमेरिकन प्रोफेसर पूछता है कि जी आपके इतने हालात खराब हैं तो इनको ये जो अमीर लोग हैं इनको कोई आपके जो लीडर है इनको कोई नहीं समझाता कि आप मुल्क ही तोड़ दें इस तरह करके। तो मैंने कहा कि ये तो लीडर असल लीडर तो वो है जिसको पता हो, असल में उसको पता हो कि मेरे अपने इंटरेस्ट को खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी जात और मेरी जिंदगी और मेरी आमदन जो है वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान रहेगा तो मैं अमीर रहूंगा, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ही चले जाता है तो अमीर को समझ आनी चाहिए कि मेरी अमीरी के साथ ही जाएगी, तो भाई बेहतर है कि थोड़ा सा शेयर कर लो उसको।
आपका जो ये अगर कि वो पैनामा में पैसे रखे हुए तो फिर तो मेरी बराबर
पनामा का और एक अच्छा तो उसको फिक्र ही कोई नहीं रहा, मगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की बड़ी जरूरत है।
एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट हमारे में क्यों है?
हाँ, तो वो अब उस पे आते हैं, मगर मैं उससे पहले ये बताना चाह रहा था कि एक इन प्रिंसिपल तो पॉलिसी एग्जिस्ट कर हम बना सकते हैं। इन प्रिंसिपल
बताइए कैसे बना
जी? मैं इन प्रिंसिपल मैं आपको ब्रीफली तीन पॉइंट्स में बता देता हूं। हम ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि अमीर और गरीब का जो फर्क है वो तेजी से कम हो सकते हैं और उसके नतीजे में गुर्बत भी तेजी से कम हो सकती
है। टैक्सेशन का
नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब पहले जो लोगों को, मेरे खासतौर पर स्टूडेंट्स भी इसको छोड़ रहे थे सुने, उनको यह एक चीज समझानी जरूरी है कि इनकम इनक्वालिटी और पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन में ताल्लुक है। रवेलॉन और बहुत से और लोगों ने स्टडीज किए, डॉक्टर दीपक नैयर ने की, मैंने भी लिखा इस पर, वो ये है कि जितनी ज्यादा इनकम इनक्वालिटी हाई होगी उतना ज्यादा जो भी जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कम आएगा। यानी अगर आपकी आमदन की तकसीम बहुत ज्यादा नामवार है तो फिर बावजूद ग्रोथ के होने के, कौमी आमदन के बढ़ने के बावजूद गरीब की आमदन पे कोई खास पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इसलिए अगर आपने गुर्बत को तेजी से कम करना है तो इनक्वालिटी को भी कम करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इनकम इनक्वालिटी को किस तरह कम किया जाए, उसके लिए मेरी तीन तजावीज हैं, अगर आप उस पर सोचने के लिए सोचें तो बताइए। पहली ये है कि गरीब और दरमियाना दर्जा, दरमियाना तबका, जिसकी आपने बात की यूरोप में, आपने बहुत सही बात की कि यूरोप में बहुत बड़ी मिडिल क्लास बनी है जिससे कि बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली हैं। सिर्फ अरिस्टोक्रेसी को तो फायदा नहीं, वो गरीब मतलब मिडिल क्लास भी आया ऊपर। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर जो एक्सेस है वो मिडिल क्लास और गरीब को भी दे दें, ताकि मिडिल क्लास और गरीब,
यानी कि अभी नहीं है वो,
अभी उनका एक्सेस नहीं है क्यों प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सी इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टेकल्स है, मैं उसके थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। तो आप वो एक्सेस दें गरीब को भी और जो मिडिल क्लास को भी। किस तरह? मसलन आप जमीन है, मैं नहीं कहता कि यहां पे आप इंकलाब ले, मगर अगर आपने कुछ ना किया तो इंकलाब आएगा यहां। अच्छा, वो ये है कि हुकूमत के पास तकरीबन 32 लाख, कई लीडरों ने तो मुझे बताया कि इससे भी ज्यादा जमीन है, कम से कम 32 लाख एकड़ हुकूमत के पास है जरई जमीन के लिए। अच्छा, अब वो जरई जमीन जो कि स्टेट लैंड है, जो असल में कौम की जमीन है, तो उसको अगर 5-5 एकड़ में डिवाइड करके जो लैंडस दहकान है, दहकान है मगर जमीन के ऊपर उसकी मलकियत नहीं है, उसमें बांट दिया जाए, इस पर मैंने पूरा पेपर लिखा, और फिर उसके साथ उसको सपोर्ट सर्विसेज भी दी जाए छोटे तक, जो 25 एकड़ से कम जिसकी जमीन है ऑपरेट कर रहे, उसको अगर आप ये आप लैंडलेस टेनेंट्स को जमीनें मिल जाती हैं और उनको बैकअप सर्विसेज मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड और फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी पे एक्सेस और क्रेडिट मिल जाता है, तो फिर आपकी बहुत तेजी से, एक तो ये होगा कि बहुत तेजी से जरूरी तरक्की होगी, जरूरी आमदन के अंदर बहुत तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास का पेजेंट है और छोटा पेजेंट है ना, ये यानी टोटल जो ऑपरेटर्स हैं जमीनों के, उनका 97% हिस्सा है, और 60% जमीन जो है, या 60 से ज्यादा ऊपर% जमीन जो है रही, वो काश्त कर रहे हैं ये दरमियाना और छोटा तबका। तो अब अगर आप दरमियाने और छोटे तबके के पास ओनरशिप भी दे देंगे उनको जमीनों की, और उनको आप एक्सेस भी दे देंगे इनपुट्स वगैरह पानी और बीज और खाद के ऊपर और नई टेक्नोलॉजीज पे, तो एक तरफ तो आप गरीब गुर्बत आपकी कम होगी रूरल एरियाज में, आपकी आमदन की, कौमी आमदन की जो हम बांट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बेहतर होगी, और साथ साथ कमी आमदन में भी तेजी से इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग जो है वो सिर्फ हुकूमत के हैंडआउट्स पर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो एक्टिव रोल अदा करेंगे सरमायादारी के अंदर।
एक ये तरीका है, दूसरा,
एक तो ये तरीका। दूसरा जनाब, आपने यूरोप की बात की, जो कि जितने सक्सेसफुल ममालक हैं जिन्होंने ग्रोथ के सस्टेन ग्रोथ अचीव की है, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, ब्रिटेन हो, या जापान हो, जो कि यूरोप में नहीं है मगर जापान ने भी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन और तरक्की की, इन मुल्कों ने बेसिक सोशल सर्विसेज की कमिटमेंट दी बड़ी शुरू में, कि जनाब हम हर शहरी को तालीम, सेहत और सोशल प्रोटेक्शन देंगे, यानी अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तो आपको हुकूमत आपको पैसे देगी, आपका ख्याल रखेगी। ये जो यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज है, इसकी कमिटमेंट दी गई जर्मनी में अंडर बिस्मार्क, आपको याद होगा, पढ़ा होगा 18 सेंचुरी में, ठीक है, जापान में 19 सेंचुरी में जी,
यह दूसरी चीज होगी,
और अर्ली 20th सेंचुरी बाकी का स्कैंडिनेवियन थी। जब यूनिवर्सल प्रोविजन इन सोशल सर्विसेज की हुई तो उसमें जाहिर है कि जो मार्केट सिस्टम इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा था वो काफी हद तक कम हुई, कुशन मिला। मगर जो ज्यादा जरूरी, जो नई रिसर्च हमें बता रही है, ईस्टर्नी वगैरह ने ये रिसर्च करके दिखाया है कि जब आपकी यूनिवर्सल प्रोविजन इन बुनियादी सर्विसेज की हो जाती है तो ग्रोथ भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है और लंबे अरसे के लिए। जाहिर है अगर आपकी ज्यादातर आबादी की तालीम बेहतर हो गई है, उनकी सेहत बेहतर हो गई है और उनको स्टेट के अंदर के साथ कमिटमेंट भी आ गई कि यार ये हमें इतना कुछ दे रही है तो हम भी काम करें, तो उसके नतीजे में फिर ग्रोथ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ग्रोथ भी बढ़ती है।
तीसरी चीज
जो है वो अब लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर मैं आज कहना और इस करने लगा था कि एक अमरीका के प्रोफेसर है, उनसे मेरी गुफ्तगू शुरू हुई काफी देर पहले, प्रोफेसर आगियोन, वो हार्वर्ड में इस वक्त पढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, आपने देखी होगी। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है। वो कहते हैं कि द ग्रेटर द डेप्थ एंड स्कोप ऑफ इनोवेशन द हायर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी जितनी आपकी जो इजादात हैं वो जितनी गहरी होंगी और जितना उनका स्कोप ज्यादा होगा, चौड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा लंबे अरसे के लिए आपकी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को जो चीज पावर करती है वो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को इनोवेशन पावर करती है। तो अब जनाब जब आप अपनी पूरी कौन को एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि भी आप तालीम ले लें, स्किल्स ले लें, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, तो फिर और साथ उनको कॉम्पिटिशन के एनवायरमेंट में डालें, तो फिर जनाब होगा ये कि आपकी जो टेक्नोलॉजी का बेस है वो बहुत ब्रॉडन हो जाएगा और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बढ़ेगी।
सर इसमें थोड़ा सा मेरा
ये एक ऑब्जर्वेशन माइंड,
वो ये कि हमने जो पिछले प्रोग्राम किए उसमें हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया, हमने बिजली के निजाम पे किया, हमने रिन्यूएबल्स में किया, हमने रेल चीजों में किया, हमें ये एक कॉमन फैक्टर नजर आया जो मेरा कल आपके प्रोग्राम में भी नजर आया
जी,
हमें एक कॉमन फैक्टर नजर आया सरकार की कमजोरी, सरकार की नाहली, सरकार की एब्सोल्यूट कैपेसिटी खत्म हुई हुई है, सरकार एक किस्म की मरी हुई है। अब मैं आपसे छोटी सी बात पूछा तो ये मरी हुई सरकार जो आपका इतना बड़ा एजेंडा है, इस पे तो ये कोई काम ही नहीं कर सकती।
ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है, बेहतरीन। अब मैं इसके इसके दो इसके जवाब के दो आंसर है। एक तो जनाब नई रिसर्च हमें बताया, देखे ना जिसको हम पसमांदा मुक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे, पिछले 20 साल में उनमें बहुत से मुल्क तरक्की याफ्ता हो गया या उस तरफ चले गए, साउथ, द राइज ऑफ द साउथ जिसको कहते हैं, उनमें जो कॉमन चीज है वो जनाब वो ये है कि उनके अंदर एक ऐसी लीडरशिप आई जिसकी लॉन्ग टर्म विजन थी, ठीक है, वो पैसा खींच के पनामा के अंदर ही कंपनियों में छुपा रही थी, वो लीडरशिप जेन्युइनली कमिटेड लीडरशिप थी और लॉन्ग टर्म उसकी डेवलपमेंट की विजन थी लोगों की बहबूद के लिए, जो कि ग्रीक्स ने ओरिजिनली कहा था कि जब आप व्हेन यू एंटर द पब्लिक डोमेन यू मस्ट लीव योर प्राइवेट इंटरेस्ट बिहाइंड, योर सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड, क्योंकि इतनी एनोबलिंग चीज है पूरे मुआशरे को बेहतर करना, डेवलप करना। तो ये हमारे यहां ये हुआ है कि लोग हमारे लीडरों ने हुकूमत में आए अपनी जेबें भरने के लिए बजाय ये कि लोगों की बेहतरी करने। तो पहली चीज तो ये है कि लीडरशिप ऐसी चाहिए जो कि जिसकी लॉन्ग टर्म विजन हो, कमिटमेंट लोगों के साथ। दूसरा उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट और इनएफिशिएंट नहीं, उस ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए हैं जिस तरह के आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को भी प्रोफेशनलाइज किया गया, उसको स्किल्स दी गई, उसको मोटिवेट किया गया, इंसेंटिव दिए, बाइंग इनटू द विजन ऑफ द लीडरशिप। सो एक तो ये लीडरशिप की बड़ी जरूरत है और ब्यूरोक्रेसी, नई किस्म की ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, और तीसरा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जिसके ऊपर आपने भी बहुत लिखा और मैंने भी कोशिश की थोड़ी बहुत, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली है, यानी वो इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स का माहौल क्रिएट किया गया जिसमें हर बंदा अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बढ़ाने की तरफ कर सके, कंपनियां भी ज्यादा एफिशिएंट हो सके, लोग भी एफिशिएंट हो सके, मेहनत करना चाहिए, इंसेंटिव्स मेहनत के लिए। तो ये माहौल था जिसके अंदर मुल्कों ने अपनी कौमों की यानी तकदीर को बदल दिया। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये सोशल प्रोविजन जो प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज की बात हो रही थी वो जनाबे वाला हो ही नहीं सकती जितनी देर तक के बुनियादी चेंजेस जो मैं आपको कह रहा हूँ हुकूमत में और ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ रहा। मगर इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी जरूरी है जो कि हमने साउथ एशिया पे के बारे में स्टडी की है और हमने किताब लिखी है डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म्स इन साउथ एशिया, कि जो हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए मगर उस किस्म की डिसेंट्रलाइजेशन में जो आप अर्लियर प्रोग्राम में करते आए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं हमें इतनी कारकर्दगी उसकी कारकर्दगी, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब जब आप लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर राइट डाउन यूनियन काउंसिल लेवल तक बल्कि गांव के और मोहल्ले के लेवल तक आप डिसेंट्रलाइज कर देंगे पावर, तो होगा ये कि वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे अली शीमा ने सही बात की है कि वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्योंकि लोगों के नजदीक होंगे, उन्होंने ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी, पब्लिक गुड्स उन्होंने प्रोवाइड करने, ठीक है, तो वो लोगों के सामने अकाउंटेबल होंगे, ये लीडरशिप अकाउंटेबल होगी। मगर एक चीज जो हम मिस आउट कर गए उस डिस्कशन के अंदर वो ये खतरा है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करेंगे ना इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, क्योंकि आप वो जो इस्लामाबाद के अंदर पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस होते थे उनके हुक्म से आप लोकल गांव के अंदर जाके उनकी गवर्नमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे या यूनियन काउंसिल की या डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें खतरा होता है लीड टेक ओवर का, इसमें भी बहुत लिटरेचर मौजूद है। देखे ना, अगर आप हुकूमतों को लोकल लेवल पे ले जाएंगे और बड़ी जिम्मेदारियों का सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तो बड़ा जिम्मेदार उसको कंट्रोल करेगा और जुल्म करेगा गरीबों पे, ठीक है ना, तो वो उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बड़ी जरूरी है।
डॉक्टर साहब, ये चीज है ना, ये एक और प्रॉब्लम इसके होना पड़ेगा
जी।
मेरी छोटी सी अब ये है कि बात तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, हम तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इसका काट सकते हैं, पर हमें ये भी सोचता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो कितनी इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर सकते हैं और कितनी करनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम हमने पॉवर्टी पर रखा होता है, आई थिंक एक्सलेंट फ्रेमवर्क है, excellent discussion there. Now what we need to do is one thing before we close, and then of course this is not the end of our conversation. We to inshallah humne bahut sari aisi baatein kar li hai, because bahut decentralization ek subject hai, abhi to aapne poverty ka issue kiya, growth ek subject hai, agar aap chahe institution ek subject hai, humne to bas subject abhi ek subject baat hui, bahut bada sawal hai abhi. Main ye chahta hu ki bade brief ki hum do teen ki jo sari baatein hai hum is message ko kai logon ne kaha ki कुछ समराइज छोटी सी करते हैं हमारे लिए कि 2-3-4 मोटे मोटे नुकते जो आप चाहते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको समराइज करते जाने से पहले।
ये सारी गुफ्तगू में अगर हमने पाकिस्तान से के जो आवाम है बेशतर आवाम उसकी हालत बेहतर करने के लिए पॉलिसी बनानी है तो हमें एक पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। जितनी देर तक एक ऐसी पार्टी बनने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी बनने की जरूरत है जो कि गरीब और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हो, अमीर को रिप्रेजेंट ना करती हो, वो पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम जब लेके आएगी और लोगों को मोबिलाइज करेगी और डेमोक्रेसी को के अंदर हम ऐसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को जीतने की के मौके फराहम करेंगे तो फिर आपका पावर स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अभी बाय द पीपल तो हुई नहीं, ठीक है ना, डेमोक्रेसी सिंस इट इज बाय द रिच इट इज फॉर द रिच, डजंट वर्क, इट्स मीनिंगलेस। तो पहली बात है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो कि अभी तक नहीं बनी, जो कि गरीब और मिडिल क्लास को, मजदूर धनवान मिडिल क्लास को, दूसरी चीज जो है वो एफिशिएंट इकोनॉमी और एफिशिएंट स्टेट एक दूसरे के साथ मिले। एफिशिएंट स्टेट बनाने के लिए जब इस किस्म की हुकूमत आएगी जिसके हम एक नई क्लास को रिप्रेजेंट करेगी तो एफिशिएंट स्टेट को बनाने के लिए आपको स्टेट के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी है। आपको ब्यूरोक्रेसी को जो आपने अभी प्रोग्राम ब्यूरोक्रेसी का जो दिया है वो उसको लागू करें, यानी ब्यूरोक्रेसी को रिस्ट्रक्चर, प्रोफेशनलाइज, इंसेंटिवाइज ब्यूरोक्रेसी को करें। इसी तरह जुडिशरी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है
ताकि पूरे स्टेट के
इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइजेशन देखे, स्टेट की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिवैम्प करना पड़ेगा। गरीब को जस्टिस में एक्सेस ओवर जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो तो जुडिशियल कमीशन बना के उसको अपने आप को दुरुस्त करवा सकते हैं, मगर गरीब आदमी के साथ जब ज्यादती होती है तो भाई उसके पास तो कोई चारा नहीं,
तो जगह नहीं होगा।
वो सारी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ये दूसरी चीज है। और तीसरा, मुल्क के अंदर आपकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो ब्रॉडली स्पीकिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको ओपन अप कर दें ताकि मिडिल क्लास और गरीब शामिल हो सकें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, हाई वेज एम्प्लॉयमेंट में, इनोवेशन के अंदर वो शामिल हो सकते हैं। तो ये एफिशिएंट स्टेट की एक निशानी
है। यानी कि जो कंक्लूजन एंड मेरा ये है कि हमें आपसे मुतफिक हो सके कि हमें पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक चुकी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी, पर उसको हल करने के लिए हमें एक सिंपल ये सोल्यूशन नहीं सोचनी चाहिए कि हमने सिर्फ उनको पैसे दे के भूल जाए। हमें एक पूरी स्टेट की रिस्ट्रक्चरिंग, पूरी थिंकिंग की रिस्ट्रक्चरिंग, पूरी पॉलिसी की रिस्ट्रक्चरिंग, एक नई सोच चाहिए हमें। और वो नई सोच जो सी है उसके लिए हमें मेहनत मशक्कत करने के लिए काम आना चाहिए। अब इसको आइंदा इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
थैंक यू सर।
आई एम इंडीड वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू टेक अप द टाइम। इंशाल्लाह वी विल डू दिस मच मोर इन द फ्यूचर। थैंक यू।
थैंक यू सर।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।